नेक्स्ट, अब कोई प्रश्न कर सकता है कि अरे इससे अच्छा हम कर्म ही ना करें, कर्म करेंगे ही नहीं तो न कष्ट आएगा, न दुख आएगा, न कुछ आएगा, तो भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, श्लोक क्रमांक 11, नहि देह भ्रताशक्यम् त्यक्तुम् कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देहभृत, देहभृत मतलब देही, मैं आत्मा जब तक इस शरीर में हूं तभी तक देह का पोषण हो रहा है, देहभृत का अर्थ समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं नहीं देहभृता शक्यम, शक्यम मतलब करने की शक्ति, मैं ये नहीं कर सकता, इस अर्थ में शक बोला जाता, शक्नोमी, शक्नोमी मतलब मैं कर सकता हूं, न शक्नोमी मतलब मैं नहीं कर सकता। तो वो कह रहे हैं त्यक्तुम कर्माण अशेषतः, अशेषतः मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि देह व्रत देही व्यक्ति जो इस शरीर में है वह कोई भी कर्म करना बंद कर दे। मैं रिपीट करूं, पहली लाइन का अर्थ है ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जो देही है, जो शरीर में है, देह में है, वह कोई कर्म ही करना बंद कर दे,
या जो ये अभिमान में है कि मैं शरीर हूं।
हाँ,
जिस जो लिबरेटेड पर्सन है वो तो
ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए कि मुक्त व्यक्ति भी कुछ कर्म करता है। आउट करिए, अभी आएगा वो कोट आ जाएगा। नहीं देह, यहाँ पे भी सही बात है कि आप देही कह रहे हैं जो शरीर की भावना में है, लेकिन जो देह में है उसको कार्य करना जरूरी है। वैसे देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये सारे बातें मुक्त पुरुषों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें मुक्त होना है। तो नेचुरली अर्थ यही है, देह व्रताम का अर्थ है जो देह की भावना से युक्त है कि मैं ये देह हूं या देह धारण किया हूं, स्पष्ट अंतर। और क्या अर्जुन मुक्त पुरुष है कि नहीं? अर्जुन मुक्त पुरुष है, लेकिन फिर भी देखिए प्रभुपाद जी इसको बहुत सिंपल बताते हैं, आत्मा का गुण ही है क्रियाशीलता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभुपाद जी किसी समय कार्य नहीं करते, अपितु जब गुणों से मुक्त होते हैं तो क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो इसलिए आत्मा को से क्रिया को हटा नहीं सकते आप कभी। हाँ, लेकिन इसमें अगर बात करेंगे तो भौतिक क्रिया से बचना है। तो अब क्या कह रहे हैं कि ये कहना कि कोई क्रिया नहीं करेगा कोई व्यक्ति जो शरीर में है वो संभव है, अशेषता, ऐसा हो नहीं सकता कि सारे कर्म बंद कर दिए जाएं, क्योंकि व्यक्ति प्रश्न करेगा। स्पेशली वाले श्लोक से आप रिलेशनशिप देखेंगे, अरे कुछ कुशल कर्म है, कुछ अकुशल कर्म है, कोई अच्छा कर्म है, कोई नहीं अच्छा कर्म है, हमें नहीं करना, हम कर्म ही नहीं करेंगे, ये संभव नहीं। इसलिए भगवान इस बात को बोल रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है कि आप कर्म ही मत करो। और इसलिए भगवान बोल रहे हैं यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य भी दीयते, इसलिए जो कर्म के फल को त्यागता हुआ चलता है वह व्यक्ति त्यागी कहलाता है। अर्थ समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि कर्म को त्यागा नहीं जा सकता है, इसलिए कर्म फलों को जो त्यागता है वह व्यक्ति त्यागी। पार्थ कृष्ण प्रभु, समझ में आया आपको? ओके, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आनंद कृष्ण प्रभु पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए।
निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी है।
आपके प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहता हूं। जो व्यक्ति मुक्त है अर्थात भगवत भक्ति में आरूढ़ हो गया, वो तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण के लिए कर्म करेगा। जो निरपेक्ष भक्त है, जो बल्ले प्रभुपाद जी हैं, वो तो दिन भर 24 घंटे कृष्ण के लिए कर्म करेंगे, तो उनके लिए त्याग का तो अर्थ ही नहीं है। यहाँ पे तो देहधारी अर्थ वही हो गया जो व्यक्ति देह की भावना से युक्त है, उनके लिए तो कोई शुद्धिकरण की मतलब ही नहीं, वो तो नेचुरली भागवत नाम जब उसमें लगे रहेंगे। भाई गोस्वामी के लिए थोड़ा ही सारे इंस्ट्रक्शन है, वो तो नेचुरली भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे। ठीक है, अब हम टीका को पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा, कृपया टीका को देखिए। श्रीनाथ प्रभु, आप लैपटॉप को सेंटर में रख सकते हैं या देख लीजिए। ठीक है, अब कोई प्रश्न कर सकता है कि इससे अच्छा होगा कि हम कर्म को ही पूरी तरह से त्याग दें। आपको मिल गया प्रभु, क्या नाम है आपका? केशव प्रभु, मिल गया 18.11। बजाय इसके कि हम कर्म फलों को त्यागें, क्योंकि इस कर्म त्याग के द्वारा ज्ञान में स्थैर्य प्राप्त होगा और कोई परेशानी नहीं आएगी। वो कह रहे हैं कि कर्म ही त्याग दो, तो बस हम ज्ञान का अनुशीलन करें, बैठे बैठे सोचते रहें, और कर्म फल जो है उसको त्यागने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कर्म करो ही मत, दोनों कर्म, क्या कहते हैं उसको, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कहते हैं कर्म ही मत करो तो कर्म फल बनेगा नहीं, तो हम ज्ञान में स्थित हो जाएंगे, ज्ञान अपने आप हो जाएगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, तो उत्तर में भगवान कहते हैं कि जो देही अर्थात देहव्रता है उसके लिए कर्मों को त्यागना असंभव है। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि प्रायः लोग मुक्त नहीं होते तो गुण उनको काम में लगाएंगे ही। यही बात अर्जुन को भी आगे बताएंगे कि तुम आज मुझे मना कर, आज मना कर रहे हो, आगे बताएंगे, पहले बता चुके हैं कि आज तुम मना कर रहे हो युद्ध करने के लिए, हाँ आगे तुम्हें स्वभाव तुम्हारा नियोजित करेगा तुम्हें युद्ध करने के लिए। तो इसलिए ये हमारे लिए भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो स्वभाव है उसको हम भगवान को अर्पित करना सीखें। ऐसा नहीं है कि भगवान को समर्पित नहीं करेंगे तो स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करेंगे। जैसे हमारे श्रीनाथ प्रभु को कुकिंग अच्छा लगता है, नहीं, अगर आप भगवान के लिए कुकिंग नहीं कर रहे होते तो कहीं ना कहीं कुकिंग जरूर कर रहे होते, है कि नहीं। जो हमारा स्वभाव है वो आ ही जाता है, तो उसके लिए वो बड़ा बहुत बड़ा प्रेशर है, लेकिन कितना बड़ा सुविधा है कि उस स्वभाव को हम भगवान की ओर मोड़ देते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं, है ना। जैसे आप कोई स्वीट बनाते थे ना, सोचते मैं खाऊंगा, सीधे सोचते हैं कृष्ण के लिए है। वैसे एक कर्म फल का त्याग नहीं है, ये तो सीधी भक्ति है, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप सीधे भगवान के समर्पित कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई असुविधा होती है मतलब सेवा करने में, क्यों नहीं होती बताइए, उनको असुविधा क्यों नहीं होती? बहुत सिंपल उत्तर है, क्योंकि रुचि है, कुछ टेस्ट है, बहुत सिंपल बात है। तो जिन क्रियाओं को करने में हमको अच्छा लगता है, हमारा बहुत भाग्य होगा कि हम समझ जाएं उसके अनुरूप हमको सेवा मिल जाएगी तो जीवन हमारा कट जाएगा। मैं जब हम ब्रह्मा जी की स्तुति की चर्चा करेंगे तो ब्रह्मा जी कहते हैं कैसे व्यक्ति प्राप्त किए हैं, सुनना चाहेंगे आप? कहते हैं पूरे है भूमन बहवोप योगिनस तो दर्पितेहा निज कर्म लब्धया। कह रहे हैं अपने कर्मों को आपको समर्पित करके पूरा बहुत सारे योगियों ने आपकी प्राप्ति करी है, और कथोपनीते और उसको परफेक्ट किया है श्रवण कीर्तन के माध्यम से। जैसे अभी आप कुकिंग कर रहे हैं तो आप सुन रहे हैं ना कि ये कृष्ण के लिए है, तभी तो इच्छा रही है कि हम सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, भावना बनी हुई है। तो इसलिए जब मैं भगवान की सेवा करूंगा तो भगवान मुझे अपना धाम देंगे, मुझे अपने सेवा में नियोजित कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, कर्मों को स्वभाव को कृष्ण को समर्पित करें और साथ साथ भगवान के डायरेक्ट श्रवण कीर्तन में लगे। ये बहुत आवश्यक है ताकि वो कर्म जो है वो सेवा के रूप में रहे, नहीं तो वह वो एक भौतिक कर्म जैसा हो जाएगा, उसको भौतिक इच्छा के लिए भी हम कर सकते हैं, कोई भी कर्म हो सकता है, ठीक है। ओके, अब भगवान कह रहे हैं कि क्यों त्यागना संभव है, जैसा पहले कहा जा चुका है, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातो तिष्ठत कर्म कृत। किसी एक क्षण के लिए भी जो जीवात्मा है उसके लिए खाली बैठे रहना संभव नहीं है। भगवद गीता 3.5 में बताया था, क्या आप सब लोग समझ पा रहे हैं इस टीका को साथ में पढ़ने से? ओके, इसलिए वह व्यक्ति जो कर्मों को करता है लेकिन फल को त्याग देता है वही वास्तविक त्यागी है, स्पष्ट है। ओके, अच्छा, जो सनिष्ठ भक्त है वह कर्ता का भाव त्यागते हुए और फलों की इच्छा को त्यागते हुए सारी क्रियाओं को अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्ति और योग्यता से करता है ताकि उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो, यही भगवान का निर्णय है। हाँ, मुझे पता था कि आप पूछेंगे कि सनिष्ठ क्या अर्थ क्या है, तो मैं उसको समझाता हूं, बहुत अच्छा बात आई है, उसको बोला था, ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए, श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी, अभी टीका में नहीं है, आपको सुनना पड़ेगा, बलदेव विद्याभूषण तीन प्रकार के भक्तों के वर्णन करते हैं, सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। मेरे पीछे बोलिए, सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। और इसके द्वारा आपको भगवत गीता का फ्लो समझ में आ जाएगा कि शुरुआत के 6 चैप्टर किस लिए हैं, 7 से 12 किस लिए हैं और आगे किस लिए हैं। तो वो क्या कहते हैं जरा देखिए, जो सनिष्ठ भक्त है वह पहले निष्काम कर्मयोग करता है, वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है, उसकी निष्ठा वर्णाश्रम में, अभी उसकी चेतना स्तर की है। उसके बाद ज्ञान योग करता है, अष्टांग योग करता है और फिर धीरे धीरे भक्ति योग पे आता है। यहां पे आप देख रहे हैं कि कर्म कर रहा है, ज्ञान के स्तर पे, ज्ञान उसका उद्देश्य है पहले ज्ञान प्राप्ति करना। ये समझ में आ रहा है सनिष्ठ का मतलब? सनिष्ठ का मतलब है उसकी साधना पहले क्या है, वर्णाश्रम, फिर उसके बाद ज्ञान योग और फिर अष्टांग योग और फिर भक्ति योग, जैसा कि हम लोग योगा लैडर में सुनते हैं। सनिष्ठ समझ में आ रहा है? ओके, और इसी कारण से भगवान ने दूसरे अध्याय से लेकर के 6 अध्याय में बताया था, आपने देखा होगा ना, कर्मयोग बता रहे हैं, फिर उसके बाद वो ज्ञान योग के बारे में वर्णन किया, अष्टांग योग के बारे में वर्णन किया, सांख्य के बारे में किया, तो आप कहेंगे जब भक्ति ही बताना है तो सारी चीजों का वर्णन क्यों है? क्योंकि अंततो गत्वा ये सब चीजें भक्ति का सोपान है, भक्ति के लेवल पे लेके आ रही। तो ये हो गया सनिष्ठ भक्त, जिसकी जो शुरुआत करता है वर्णाश्रम से। ओके, अब वो कह रहे हैं और ये बात बता रहे हैं कि जो छह अध्याय हैं वह सनिष्ठ भक्त के क्रमिक विकास का वर्णन करते हैं, धीरे धीरे वो प्रगति कर। अब वो कह रहे हैं परिनिष्ठ भक्त क्या होता है? परिनिष्ठ भक्त वो होता है जो सीधे भक्ति में लगता है, परिनिष्ठ सीधे भक्ति में लगता है, डायरेक्ट उसकी साधना क्या है? भक्ति। और इसी को अनन्य भक्त कहा जाता है, डायरेक्ट उसकी साधना वर्णाश्रम नहीं है, साधना क्या है? भक्ति। उसको भक्ति में श्रद्धा है, नाम जप करना, भागवत पढ़ना, ऐसे हमने भी कल चर्चा किया था, श्रवण कीर्तन उसकी मुख्य साधना है, लेकिन वह वर्णाश्रम के नियमों का पालन बिना आसक्ति के करता है। अर्थात वह ये नहीं सोचता है कि वर्णाश्रम के नियम का पालन करके मुझे भगवत प्राप्ति होगी। वो क्यों करता है? समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए, ताकि जो लोग सनिष्ठ हैं, जो लोग वर्णाश्रम के नियमों में जिनकी निष्ठा है, वह उसको देख करके करते रहे। जैसे कि अगर अर्जुन का उदाहरण लें तो ये परिनिष्ठ भक्त हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति तो कर रहे हैं, ये कि नहीं कह सकते साधना के लिए कर रहे हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, लेकिन वह एक क्षत्रिय के रूप में भी कार्य करते हैं। ये बात आप समझ में आ रहा है? अब ये करते क्यों हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये कार्य भगवान को करना पड़ता। भगवान अगर वर्णाश्रम की स्थापना करना चाहते हैं तो उनके भक्त अगर इस प्रकार से करते हैं कि भक्ति कर रहे हैं मुख्य रूप से और वर्णाश्रम के नियमों का पालन दिखा रहे हैं दूसरों को करते हुए, तो उनको देख क्यों लोग भक्ति करने लगते हैं? तो भगवान वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने लगते हैं तो भगवान को स्वयं आकर के धर्म की स्थापना उस तरह से नहीं करनी पड़ती वर्णाश्रम के। समझ पा रहे हैं आप? जैसे भरत महाराज जब वो राजा थे तो उन्हें बहुत सारे यज्ञ किए थे ना, तो क्या उनको पता नहीं था कि नाम से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? हाँ, उनको पता था, उनके भजन में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बहुत से लोगों की श्रद्धा नहीं थी, इसलिए वह उनको यज्ञों में नियोजित किए ताकि धीरे धीरे उनकी चेतना का विकास हो।
भगवान स्वयं भी जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने उन्होंने भी 16,000 जब साधियां की तो सारे यज्ञ तप निष्क्रिय, भगवान को स्वयं ही पता है लेकिन फिर भी वो आचरण कर रहे हैं।
और भगवान स्वयं बोलते हैं कि अगर मैं नहीं करता हूं तो इससे अव्यवस्था समाज में आ गई। तो आप समझ पा रहे हैं परिनिष्ठ भक्त। अब उसके बाद वो बता रहे हैं और हाँ उसके बाद वो बता रहे हैं निरपेक्ष भक्त, जो केवल भक्ति करते हैं, उन्हें वर्णाश्रम के नियमों से कोई खास मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वो पाप नहीं करते, पाप करते। फिर ध्यान दीजिएगा, निरपेक्ष भक्त आप सिंपल कहिए सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं, वो बस भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनको वर्णाश्रम के डिटेल नियमों से कोई मतलब नहीं, या इवन गृहस्थ भी हो सकता है, लेकिन वह वर्णाश्रम के बहुत डिटेल नियम में, जैसे कि आप देख सकते हैं श्रीवास ठाकुर, मगर उनको साधक तो नहीं मानते, वो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अब वर्णाश्रम के डिटेल नियमों को पालन करने में कोई रुचि है ही नहीं, रिजेक्ट ही कर दिया। ये चीज भगवान आगे लेके जाएंगे सर्वधर्मान प्रत्यजग, वहां पे आप पकड़िएगा। माइक पे बोलिए, ऑन करिए।
भागवतम में अवधूत ब्राह्मण जड़ भरत ये सब निरपेक्ष
हैं, और नारद मुनि भी इस बात को अब बताते हैं कि अगर अपने क्या है तक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजाम हरेर भजन अपक्वोत पते ततो, यदि अपने स्वधर्म को त्याग करके एकमात्र एक निष्ठ भाव से कृष्ण की शरण लेता है लेकिन अगर गिर भी जाता तो उसको नुकसान क्या है? तो खैर, कहने का अर्थ यह है कि वह वर्णाश्रम के नियमों का पालन ठीक से ना भी कर सके, और हम में से कौन कर सकता है समय कलयुग में, लेकिन देखा जाए तो निरपेक्ष होना ज्यादा आसान है, स्पेशली ब्रह्मचारियों के लिए तो बहुत आसान है कि भगवान की भक्ति ही करना है और कुछ कार्य नहीं करना। और प्रभुपाद जी प्रायः निरपेक्ष और निरपेक्ष का ही वर्णन करते हैं, जो भक्ति कर रहा है भक्ति कर रहा है, उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभुपाद स्वयं निरपेक्ष है, इसलिए हमेशा उसी पे ही फोकस करते कि तुम ये मत सोचो कि तुम ये नियम पालन कर पा रहे हो, वो नहीं कर पा रहे हो, वो कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, लक्ष्य हमारा निरपेक्ष ही हो जाना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति ही करनी है। हाँ जी,
जो भागवत के प्रथम टीकाकार है श्रीधर स्वामी, उनको किस में रखेंगे?
निरपेक्ष, नो डाउट में रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि उनका बच्चा हुआ था और उसको उनकी पत्नी मर गई थी, जहां तक मुझे स्मरण हो रहा था, तो वो सोच रहे थे कि क्या करें, तो देखते हैं कि छिपकली का एक बच्चा पैदा होता है, उसके लिए कीड़ा आ जाता है, तो समझ गए कि सबका भरण पोषण करने वाले भगवान है, वो त्याग करके भगवान की सेवा में चले जाते हैं। एकदम स्पष्ट है, ठीक है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि परिनिष्ठ भक्तों की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि मान लीजिए इस कौन का कोई डिवोटी है, वो शादी करता है, हाँ किसी ने प्राय सारी 99% लोग बाहर हैं। अब वो सोचिए एक पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी और चौथी पत्नी पांचवी पत्नी करे और कहे मैं हरे कृष्ण कर रहा हूं, तो समाज में कितना बुरा आदर्श स्थापित होगा, कहेंगे ये इस्कॉन के भक्त कैसे हैं या भगवान के भक्त कैसे होते हैं। तो इसलिए भी आवश्यक है कि हम लोग जो भक्त हैं वो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करें, इसलिए नहीं कि उससे उनकी भक्ति बढ़ती है, इसलिए ताकि समाज में अव्यवस्था नहीं हो। हमारी भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्ति करने से। कुछ और हमारे हमारा ये विश्वास होना चाहिए भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है। तो साधना भक्ति है और साध्य भी भक्ति है, लेकिन वर्णाश्रमों के नियमों का पालन केवल इसीलिए करते हैं ताकि समाज में स्थापित हो, समाज में आदर्श स्थापित हो, अर्थात ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कर्म शून्य नहीं है, कुछ कर्म मान लीजिए उसने बाह्य रूप से करे भी हैं, उससे उसकी भक्ति ढकती नहीं परिनिष्ठ भक्त की। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है? तो अब यही इसीलिए बात हो रही है कि जो सनिष्ठ भक्त है उस, आप समझ में आ गया सनिष्ठ मतलब है उसको भी पूरी तरह ज्ञान प्राप्त नहीं है, तो वो नियमों का पालन कर रहा है सही भावना से, सतोगुणी भावना से, कर्ता की भाव को त्याग करके, कर्म फल को त्याग करके, और उस ताकि उसके हृदय में ज्ञान उदित हो जाए। मेक सेंस? ओके, तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ना चाहते हैं? आनंद कृष्ण प्रभु या संतोष कृष्ण प्रभु पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़िए।
भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता।
नहीं तिष्ठत्य कर्म कृत। हाँ जी,
अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं, तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है।
तो प्रभुपाद जी सीधे उठा करके उसको निरपेक्ष या परिनिष्ठ में डाल देंगे। परिनिष्ठ और जो निरपेक्ष हैं, इन्हीं को अनन्य भक्त कहा जाता है, जिनकी साधना भक्ति है। डायरेक्ट पढ़िए।
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मित संघ के अनेक सदस्य हैं, जो अपने कर्म, अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं, और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है और वे सन्यास में स्थित होते हैं।
थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। सन्यास का अर्थ था कि भौतिक इच्छा पर आधारित किसी भी कर्म को त्याग देना। तो आप कहेंगे अरे नौकरी करना तो भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म है। बोलिए माइक पे कुछ बोलना चाहते
हैं। लेकिन उसका उद्देश्य है कि भगवान को ये फल अर्पण।
यस, ऐसे आपको उदाहरण दूं, कृष्णानंद प्रभु वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थे, प्रचार करने के लिए गए थे, तो मंदिर में कोई पैसा नहीं था, तो उनकी डिग्री कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी जो वहां के जो प्रोफेसर उनसे भी ज्यादा थी, तो वहां वो सैफरन में पढ़ाने जाते थे और उसे जो सैलरी मिलती थी उसे मंदिर चलता था। दिक्कत ये हो गई कि वहां पर जाके खाली वो कृष्ण कृष्ण बोलने लगे, तो वहां के जो अथॉरिटीज ने कहा आप यहां प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, हाँ मैंने सुना है कि एक हमारे भक्ति समित महाराज जब वो ब्रह्मचारी थे, तो वो जो मंदिर था उस समय भी वह मंदिर के पहले पैसे नहीं थे, तो वो मंदिर में पैसे नहीं थे तो बैंक में मैनेजर थे, तो सैफरन में जाके बैंक में मैनेजमेंट करते थे। मैंने सुना इस प्रकार से, ताकि धन आए और मंदिर चल सके। और जयानंद प्रभु के बारे में भी हम सुनते हैं कि किस प्रकार से रात में कैब चलाते थे ताकि मंदिर का निर्वाह हो सके। तो ये सारी चीजें हमें देखना चाहिए कि बाह्य कार्य करते हुए भी, सामान्य कार्य करते भी ऐसे व्यक्ति सन्यासी, इसीलिए प्रभुपाद जी ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। पढ़िए।
यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए।
ओके, परित्याग किस प्रकार करना चाहिए? कर्ता की भावना त्यागते हुए और भगवान के लिए करना चाहिए, और कुशल अशुल कुशल का भेद नहीं देखना चाहिए, अच्छा लग रहा है वो बुरा लग रहा है, इससे हम ज्ञान में स्थित होते हैं।